ಗಿರಿ ಬರದಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ಎಸಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವಿಚಾರ್ಯ ಶ್ರೋತಿ ಸುಷ್ಮದಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕುರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವೃಂದಕಿ ನಾಮಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಿ ಪ್ರೇಮ ಸೆ ಕೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದಕಿ ಜಯ ಶಿಶು ರಾಧ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪ ಗೋಪಿನಾಥ ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಂಡ ರಾಧ ಕುಂ ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಕಿ ವೃಂದಾವನ್ ಧಾಮ್ ಕಿ ಮಾಯಪುರ್ ನವದೀಪ್ ಧಾಮ್ ಕಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ ಧಾಮ್ ಕಿ ಗಂಗಮಯ ಕಿ ಯಮುನಾಮಯ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ಕಿ ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಿ ಸಮವೇದ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕಿ ನತಾಯ ಗೌರ್ ಪ್ರೇಮ. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gaur. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज हम पढ़ रहे हैं दसवां स्कंद से दसवां अध्याय श्लोक क्रमांक 15। दरिद्रो निरहंस्तंभो मुक्त सर्वमदेरिह कृच्छ्रम यदृच्छयाप्नोति तद्धि तस्य परम तपः। दरिद्रो निरहंस्तंभो मुक्त सर्वमदेरिह कृच्छ्रम यदृच्छयाप्नोति तद्धि तस्य परम तपः। दरिद्रो निरहंस्तंभो मुक्त सर्वमदेरिह कृच्छ्रम यदृच्छयाप्नोति तद्धि तस्य परम तपः। दरिद्र गरीब निरहम स्तंभ सारी झूठी प्रतिष्ठा से स्वयं में वो छूट जाता है। मुक्त मुक्त सर्व सभी मधय मिथ्या अहंकार से यह इस संसार में कृच्छ्रम मुश्किल से यदृच्छयाप्नोति भाग्यवश जो उसे प्राप्त होता है तत वह ही निस्संदेह तस्य उसकी परम पूर्ण तपः तपस्या। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। दरिद्र व्यक्ति को स्वतः तपस्या करनी पड़ती है क्योंकि उसके पास अपना कहने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती। इस तरह उसकी मिथ्या प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। वह सदैव भोजन आश्रय तथा वस्त्र की आवश्यकता अनुभव करता रहता है। अतः दैव कृपा से जो भी उसे मिल जाता है उसी से उसे संतुष्ट रहना पड़ता है। इस तरह की अनिवार्य तपस्या करते रहना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे वह शुद्ध और मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, संत पुरुष भौतिक मिथ्या प्रतिष्ठा से छुटकारा पाने के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता स्वीकार करता है। अनेक बड़े बड़े राजा लोग अपना राजसी ठाट बाट छोड़कर वैदिक संस्कृति के अनुसार तपस्या करने के लिए वन में इसलिए चले गए कि वे शुद्ध हो सकें। किंतु जो स्वेच्छा से ऐसा नहीं करता वह यदि दरिद्र बन जाता है तो स्वतः तपस्या करने लगता है। तपस्या हरेक के लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि इससे भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। अतः जिसे अपनी भौतिक स्थिति का बहुत गर्व हो तो उसकी मूर्खता ठीक करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि उसे दरिद्र बना दिया जाए। दरिद्रय दोषो गुण राशि नाशी। जब मनुष्य दरिद्र होता है तो धन शिक्षा तथा सौंदर्य में उसका मिथ्या अहंकार चूर चूर हो जाता है। इस तरह राह में लाने पर वह मुक्ति के योग्य बन जाता है। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामय्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमाम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहां पर नारद मुनि बता रहे हैं दरिद्र व्यक्ति को स्वतः तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास अपना कहने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती। इस तरह उसकी मिथ्या प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। वह सदैव भोजन आश्रय तथा वस्त्र की आवश्यकता अनुभव करता रहता है। अतः दैव कृपा से जो भी उसे मिल जाता है उसी से उसे संतुष्ट रहना पड़ता है। इस तरह की अनिवार्य तपस्या करते रहना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे वह शुद्ध और मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि कई श्लोकों में यहां पर नारद मुनि जो दरिद्रता है उसका लाभ, उसका परिणाम क्या होगा, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यहां पर श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो साधुगण होते हैं वह स्वेच्छा से एक गरीब अवस्था में रहते हैं और स्वेच्छा से वह इस गरीब अवस्था में, दरिद्र अवस्था में तपस्या करते हैं। और यह जो तपस्या जो है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए बहुत अनुकूल है। तो यह जो दरिद्रता जो नारद मुनि यहां पर चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में ठीक ठीक समझावट होना यह अत्यंत आवश्यक है। एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी यहां पर मुंबई में थे तो प्रभुपाद जी अनेक लोगों से मिल रहे थे और उनके भक्तगण मुंबई के अलग अलग जो ऐश्वर्यवान लोग हैं उनको प्रभुपाद जी से मुलाकात कर रहे थे। तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था तो भक्तगण प्रभुपाद जी से इंट्रोड्यूस कर रहे थे और कह रहे थे कि ये बहुत ही धनवान परिवार से हैं, बड़ा इंडस्ट्री है, बड़ा बिजनेस है। तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि अच्छा है, आप बड़े बिजनेसमैन हो तो आपका बिजनेस से जो भी आप कमाते हो उससे थोड़ा बहुत आपको भगवान को देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी प्रचार करने लगे तो बिजनेसमैन कहने लगा, कुछ देरी के बाद उन्होंने कहा कि देखिए स्वामी जी, आप तो 40 रुपया लेकर अमेरिका गए और जब वापस आ गए तो 40 करोड़ से ज्यादा संपत्ति हो गई। तो देखिए आप कितना बड़े बिजनेसमैन हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा है, आप भी इस बिजनेस में जुट जाओ। तो प्रश्न उठता है कि क्या प्रभुपाद जी दरिद्र थे? यहां प्रभुपाद जी स्वयं लिख रहे हैं कि संत पुरुष भौतिक मिथ्या प्रतिष्ठा से छुटकारा पाने के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता स्वीकार करता। तो क्या प्रभुपाद जी दरिद्र थे? तो यहां पर जो नारद मुनि कह रहे हैं कि दरिद्रता से एक व्यक्ति का जो मिथ्या अहंकार जो है उसका चूर चूर हो जाता है, यह तो निश्चित है। 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी को उपदेश देते हुए अवंती ब्राह्मण का कहानी बताते हैं कि इस अवंती प्रदेश में एक बहुत ही अमीर ऐश्वर्यवान ब्राह्मण थे और बहुत संपत्ति थी लेकिन बहुत कंजूस था और इसलिए वह किसी भी अपने जो बीवी बच्चे इत्यादि किसी के लिए कुछ खर्चा नहीं करता था, सब जो धन था इकट्ठा करता था। और इसलिए क्या हुआ कि ऑफकोर्स भगवान तो यह पूरा बहुत विस्तार रूप से बताते हैं, मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि बताते हैं कि इन्होंने अपना जो धन है बहुत संभाल के रखा था, किसी भी चीज के लिए उपयोग नहीं किया। लेकिन इससे क्या हुआ कि जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी बीवी बच्चे थे, सब बहुत नाराज हुए। और इतना ही नहीं, यह व्यक्ति जब यह जो ब्राह्मण जो थे, किसी भी प्रकार का धर्म के लिए पैसा भी उपयोग नहीं करता था। कम से कम जो देवी देवता हैं उनकी उपासना के लिए भी पैसा नहीं खर्चा करता था। तो इसलिए जो देवी देवताएं जो हैं और जितने भी लोग थे सब नाराज हुए। और इसका फलस्वरूप क्या हुआ कि उसका जितना भी धन था धीरे धीरे अनेक अनेक लोगों ने उसे छीन लिया। कुछ धन अपने मित्रों ने छीन लिया, कुछ रिश्तेदारों ने, ऐसे धीरे धीरे करके उसका पूरा धन जो है वो समाप्त हो गया और वो पूरी तरह से गरीब हो गया। और जब गरीब हो गया तो गरीब व्यक्ति के पास मित्र नहीं होते हैं, सब लोग चले जाते हैं। जब तक जेब में पैसा होता है तब तक मित्र रिश्तेदार इत्यादि आते हैं, पूछते हैं क्या हाल चाल है, ये वो पूछते हैं। जब व्यक्ति गरीब बन जाता है क्या होता है, सब लोग छोड़कर चले। तो जब ये व्यक्ति ये ब्राह्मण गरीब बन गया तो सोचने लगा, अरे क्या हो गया मेरा जीवन, मैंने इतना कष्ट करके इतना संपत्ति इकट्ठा किया था, क्या हुआ, अभी कोई नहीं है मेरा, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई नहीं है। ऐसे वो पश्चाताप करने लगा। और इस पश्चाताप में वह इस भौतिक संसार से विरक्त हो गया और वह सोचने लगा कि वास्तव में देखा जाए तो इस धन का क्या उपयोग है। अंततः कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अंततः उसका धन तो चला जाता है, अंततः वो कुछ भी धन अपने साथ नहीं लेकर जा सकता है। तो इस धन का क्या मतलब है, इस धन की वजह से केवल व्यक्ति घमंडी हो जाता है, दूसरों को तकलीफ देता है, यही धन का परिणाम है। तो वास्तव में देखा जाए तो यह धन जो है केवल व्यक्ति का एक शत्रु है, मित्र नहीं है। जय श्री राधा जी भगवान। ऐसा सोचते हुए वह एक सुंदर गीत गाता है। इस गीत में यह अवंती ब्राह्मण कहता है कि वास्तव में यह भगवान की कृपा है, यह भगवान की कृपा से ही मुझे इस दरिद्र अवस्था में भगवान ने डाल दिया है, ताकि मैं समझूं कि यह जो धन जो है इस धन का कोई वास्तव में मतलब नहीं है। और इस तरह पूरी तरह से विरक्त होकर एक सन्यासी का जीवन जीने लगा और निरंतर भगवान के ऊपर स्मरण करते हुए इधर उधर भटकने लगा। और जब वो इधर उधर भटक रहा था अलग अलग जगहों में, तभी अनेक अनेक लोग उसको देखकर, कुछ लोग गाली देते थे, कुछ लोग उस पर थूकते थे, कुछ लोग पत्थर मारते थे, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के पीड़ाओं से उसको गुजरना पड़ा। लेकिन सभी समस्याओं में वह एकदम बिल्कुल स्थिर था। उन्होंने यही सोचा कि यह सब भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस अवस्था में डाल दिया है, ताकि मैं पूरी तरह से इस भौतिक दुनिया से विरक्त हो जाऊं। तो जो नारद मुनि यहां कह रहे हैं यह बिल्कुल सही है कि जब एक व्यक्ति का धन जो है जबरदस्ती से छीन लिया जाता है तो निश्चित है कि उसका जो अहंकार है वो चूर चूर हो जाता है और वो पूरी तरह से इस भौतिक दुनिया से अनासक्त हो जाता है। तो यह अवंती ब्राह्मण का जो कहानी है भगवान स्वयं बता रहे उद्धव जी को इसी सिद्धांत को समझाने के लिए कि कैसे दरिद्रता से एक व्यक्ति का अहंकार चूर चूर हो जाता है और इस भौतिक दुनिया से अनासक्त हो जाता है। लेकिन यहां पर और भी चीज बताया गया है, वह क्या है? यहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं दरिद्रय दोषो गुणराशि नाशी। इसका मतलब क्या है? इसका असली अनुवाद देखेंगे तो दरिद्रय दोषो गुण राशि नाशी, इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति दरिद्र हो जाता है उसके जितने भी अच्छे गुण हैं उसका नाश हो जाता है। दरिद्रय दोषो, दरिद्रता एक दोष है, दरिद्रता एक दोष है, उस दोष से क्या होता है? गुण राशि नाशी, जितने भी अच्छे गुण है वो खत्म हो जाते हैं। तो क्या एक विरोधाभास लगता है ना? एक ओर से शास्त्र बता रहा है कि दरिद्रता बहुत अच्छा है, इससे व्यक्ति का जो मिथ्या अहंकार है वो चूर चूर हो जाता है, बहुत अच्छा है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और इसलिए जो साधुगण है वो स्वेच्छा से दरिद्र बन जाते हैं। और वास्तविकता में हम देखते हैं कि हमारे परंपरा में इतने सारे उदाहरण हैं, त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति, जो गोस्वामीगण थे वो मंडलपति थे, बहुत बहुत ऐश्वर्य था उनके पास, लेकिन स्वेच्छा से उन्होंने क्या किया? त्यक्त्वा तूर्णम शेष, सब कुछ त्याग दिया और केवल एक कौपिन धारण करके हर रात को अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे। सभी प्रकार का धन को त्याग दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े जमींदार के पुत्र थे, तो जब रघुनाथ बार बार घर से भागने का प्रयास कर रहे थे तो तभी उनकी माता ने कहा इनको बांध देना चाहिए, घर में रस्सी लेकर बांध देना चाहिए। तो उनके पिता ने कहा देखो इनके पास इंद्रदेव से भी ज्यादा ऐश्वर्य है, पत्नी जो है अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर है, अगर ये चीज उनको बांध नहीं सकती है तो रस्सी से क्या होने वाला है। लेकिन इतना ऐश्वर्य को वो त्याग कर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए गए। श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चरों में अक्सर एक उदाहरण देते हैं कि कलकत्ता में एक बहुत अमीर जमींदार था राजा कृष्णचंद्र, बहुत बार ये उदाहरण देते प्रभुपाद जी, और बहुत अपना जो धन है ब्राह्मणों में बांटते थे। तो एक ब्राह्मण के पास राजा कृष्णचंद्र गए और कुछ दान देने के लिए गए, तो ब्राह्मण ने कहा आपका धन की कोई आवश्यकता नहीं है, देखिए मैं भीख मांगता हूं, भीख मांगकर मुझे कुछ चावल मिलता है, और यहां देखिए यहां एक इमली का पेड़ है, इमली का जो पत्ता है वो पत्ते को मैं चावल में मिलाकर मैं खाता हूं, मैं संतुष्ट, आपका धन की आवश्यकता नहीं है। तो जो ब्राह्मण लोग हैं वो स्वेच्छा से दरिद्रता में रहते थे। प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते हैं, वो चाणक्य पंडित का। तो चाणक्य पंडित हालांकि महाराज चंद्रगुप्त के मंत्री थे, लेकिन राजा तो सब कुछ देने के लिए तैयार थे, लेकिन चाणक्य पंडित कहाँ रहते थे? एक छोटा सा कुटिया में रहते थे, ऐसा वो भी एक जंगल में, एक जंगल में छोटा सा कुटिया बनाकर वहां पर चाणक्य पंडित रहते थे, राजा के मंत्री थे। तो ब्राह्मण जो है वो स्वेच्छा से गरीबी में रहते हैं, क्यों? आठवें स्कंद में जब वामन देव जाते हैं बलि महाराज से भीख मांगने के लिए, तो जब बलि महाराज उनसे, वामन देव से पूछते हैं, क्या चाहिए आपको? जो चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो वामन देव कहते, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि महाराज कहते हैं, देखो आपका हाइट भी कम है, बुद्धि भी कम है लगता है, मैं तो आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। मैं तो आपको जितना धन चाहिए, ग्रह चाहिए, जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। अरे 3 पग क्या मांग रहे हो, ये तो अपमान है मेरे लिए। तभी वामनदेव कहते हैं कि देखिए, खास करके ब्राह्मण के लिए, अगर ब्राह्मण जितना धन मिलता है उसे संतुष्ट नहीं है, तो उनका जो तपस्या का जो फल है वो सब खत्म होता है। जिस प्रकार अगर एक घड़े में पानी है लेकिन उसका क्या थोड़ा सा छेद है, तो क्या होगा? धीरे धीरे जो पानी है वो निकल जाता है। उसी प्रकार अगर ब्राह्मण जितना धन है उसे संतुष्ट नहीं हो, तो तपस्या का जो फल है, क्योंकि ब्राह्मण का मेन कर्तव्य क्या है? तपस्या। वो तपस्या का फल वो खत्म हो जाता है, तो इसलिए मैं संतुष्ट हूं। ऐसे इस प्रकार कहकर वामन देव सब ब्राह्मणों को उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार एक ब्राह्मण जो है किस प्रकार जीना चाहिए। तो हम ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं शास्त्र में कि कैसे दरिद्रता जो है भक्तों के लिए, ब्राह्मणों के लिए बहुत अच्छा है, जिससे एक व्यक्ति एक सरल जीवन जीता है। अगर व्यक्ति सरल जीवन नहीं जीता है तो वो भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकता है। तो इसलिए जो अमीर व्यक्ति है, ज्यादातर जो अमीर व्यक्ति है वो सोचता है, मुझे भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, मेरे पास धन है, सब कुछ है, तो भगवान के पास क्यों जाऊं, ऐसे उनका सोचना होता है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, हो सकता है गरीब व्यक्ति वो सोचता है कि अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, कम से कम भगवान मुझे कुछ देंगे तो अच्छा है। तो इसलिए कम से कम कुछ मांगने के लिए भगवान के पास जाता है गरीब व्यक्ति। इस तरह दरिद्रता जो है वो भगवान के ऊपर जो निर्भरता है वो बढ़ाने के लिए अच्छा है। लेकिन दूसरी ओर यहां शास्त्र भी यह भी कहता है, दरिद्रता दोषो गुण राशि नाशी, दरिद्र दोषो गुण राशि नाशी। और एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक व्यक्ति के अच्छे गुण बढ़ाने के लिए दो चीज अनुकूल नहीं है। अगर अच्छे गुण बढ़ाना है, दो चीज अनुकूल नहीं है। क्या है वो? एक है दरिद्रता और दूसरा है लोभ। तो एक व्यक्ति को दरिद्र भी नहीं होना चाहिए और लोभी भी नहीं होना चाहिए। दोनों के वजह से एक व्यक्ति का अच्छे गुण जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसको कैसे समझा जाए? ये तो एक विरोधाभास लगता है। एक ओर से शास्त्र कह रहा है कि दरिद्रता अच्छा है, दूसरी ओर से शास्त्र कह रहा है कि दरिद्रता के वजह से अच्छे गुण सब खत्म हो जाते हैं। तो इसको ठीक ठीक समझने के लिए हाँ, सुदामा ब्राह्मण का जो कथा है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि सुदामा ब्राह्मण जो थे बहुत गरीब थे, तो किसी भी प्रकार का खाने के लिए कुछ अच्छा चीज नहीं, रहने के लिए कुछ सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन यहां पर हम इस कथा में, भागवतम की कथा में हम देखते हैं कि उनकी पत्नी उनसे कहती है कि कृपया करके आपका जो मित्र है कृष्ण, आपका मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, कृपया करके उनके पास जाकर कुछ मांगिए। लेकिन यहां पर उनकी पत्नी यह नहीं सोच रही थी कि देखो मैं कितना गरीब हूं, मैं कितना क्या अवस्था है मेरी, आप जरा सोचिए समझिए क्या अवस्था है, जरा जाकर कुछ मांगिए आपके मित्र से, मेरे लिए कुछ तो मांगिए। ऐसे उनकी पत्नी ने ही सोच रही थी। वास्तव में उनकी पत्नी सोच रही थी आपका दशा देखिए, आपका कितना बुरा हाल है। भागवत में कहा गया है कि उनकी पत्नी जो भी खाने के लिए उनको मिलता था थोड़ा बहुत, वो सब कुछ सुदामा के लिए देती थी और स्वयं भूखा रहती थी। और यहां पर भी उनकी पत्नी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांग रही थी, केवल सुदामा के लिए वो मांग रही थी। ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं कह रहे थे कि आपके लिए जाकर कुछ मांगो, क्योंकि अगर वो ऐसे कहती थी तो सुदामा कहता था कि मेरे लिए कुछ जरूरत नहीं है। तो इसलिए उनकी पत्नी केवल कहती है कि देखिए आपका बहुत ऐश्वर्य मित्र है द्वारका में, आप जाकर मांगिए कुछ तो। लेकिन वास्तव में वो सोच रही थी कि आपके लिए कुछ मांगो। और सुदामा का क्या सोच था? सुदामा सोच रहे थे सही में मेरे पति की क्या अवस्था है, उनके लिए कुछ जाकर मांगना चाहिए। तो हालांकि दोनों दरिद्र अवस्था में थे, लेकिन दोनों ही संतुष्ट थे। ऐसा नहीं कि वो सोच रहे थे कि मैं दरिद्र हूं, कितना कितना दुखित अवस्था है ये, ऐसा नहीं सोच रहे थे। दोनों पति पत्नी उस अवस्था में पूरी तरह से संतुष्ट थे। ये सोचने की बात है। तो क्या वो सही में दरिद्र थे? क्योंकि दरिद्रता का मतलब यह है कि यह अनुभव करना कि मुझ में कुछ कमी है। लेकिन यहां पर सुदामा और उनकी पत्नी दोनों पूरी तरह से संतुष्ट थे। और तो सुदामा जाते हैं भगवान के पास और भगवान के लिए कुछ उपहार देने के लिए उनकी पत्नी भीख मांगती है। भीख मांगकर कुछ पोहा मिलता है उनको और उसको लेकर सुदामा जाते हैं। और जब तो भगवान उनको जब देखते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, उनका पूजा करते हैं और स्वयं रुक्मिणी देवी चामर करती हैं। और जब और ऐसा नहीं कि सुदामा तुरंत भगवान से कहते देखो हमारा अवस्था क्या है, कुछ तो दे दो, आप इतना अमीर है कुछ तो दे दो। सुदामा एक शब्द भी नहीं कहते हैं, स्वयं के लिए कुछ भी नहीं मांगते हैं, वास्तव में सुदामा सोच रहे थे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं जो सबसे बड़ा धन इस दुनिया में वो क्या है, वह है भगवान की संगति, वह सबसे बड़ा धन है। यह धन मुझे प्राप्त हुआ है, इस धन को प्राप्त करके और किसी भी तरह का धन की क्या आवश्यकता है, यह सुदामा सोच रहे थे। और उस धन को प्राप्त करके पूरी तरह से संतुष्ट थे। और जब भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ जानते हैं, और भगवान उनसे पूछते हैं क्या आपने कुछ लाए मेरे लिए, तो सुदामा तो बहुत संकोच कर रहे थे देने के लिए, सोच रहे थे मैं कैसे दूं। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, भगवान जबरदस्ती छीन लेते हैं। और जब भगवान खाने लगते हैं उसको, तो भगवान सोच रहे हैं, भगवान क्या सोच रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं, देखिए हालांकि भगवान को तो सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी भगवान सोच रहे हैं, अरे मेरा ये जो भक्त जो है, मेरा भक्त है, मैं तो तीनों लोगों का स्वामी हूं, लेकिन मेरा भक्त इतना दरिद्र कैसा है। भगवान स्वयं सोच रहे हैं, और इसके उत्तर में भगवान सोचते हैं, ऑफ कोर्स ये सब विश्वनाथ ठाकुर अपने टीकाओं में बताते हैं। तो भक्तों के दो श्रेणी होते हैं, दो प्रकार के भक्त होते हैं। देखिए भगवद गीता के अनुसार भगवान स्वयं कह रहे हैं, अनन्य चिंतयंतो माम ये जन परुपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो भी कमी है मेरे भक्तों को मैं देता हूं। तो सुदामा ऐसे इतना गरीब कैसे रहे, फिर कैसे इस प्रकार दरिद्र अवस्था में रहे, भगवान को देना चाहिए ना। तो समझाते हैं आचार्यगण, दो श्रेणी के भक्त होते हैं। एक प्रकार के भक्त जो है वह भौतिक ऐश्वर्य से घृणा करते हैं, नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल नहीं चाहिए। इसका एक उदाहरण है जड़ भरत। तो जड़ भरत, क्योंकि उनका पिछले जन्म का अनुभव था, तो इसलिए जड़ भरत वो भौतिक ऐश्वर्य से घृणा करते थे, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। तो इसलिए स्वेच्छा से वो किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य से वो दूर रहते थे। तो ऐसे भक्त जो भौतिक ऐश्वर्य से घृणा करते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान जबरदस्ती ऐश्वर्य नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है, वो उस दरिद्र अवस्था में रहना उनकी इच्छा है, उसी में वो संतुष्ट हैं। तो इसलिए भगवान उनको उसी अवस्था में रखते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के भक्तगण जो हैं, वह परवाह नहीं करते हैं, ऐश्वर्य हो या ना हो, उन पर असर नहीं पड़ता है। दोनों अवस्थाओं में वो अपना भक्ति जो है वो करते रहते हैं। तो ऐसे भक्तों को भगवान ऐश्वर्य देते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य देने पर भी उनका भक्ति में किसी प्रकार का बाधा नहीं आता है। इसका उदाहरण है प्रहलाद महाराज और बलि महाराज, ये दो उदाहरण है। तो सुदामा ब्राह्मण जो थे वो पहले श्रेणी के भक्त थे अब तक,
कि वह भौतिक ऐश्वर्य से घृणा करते थे। वो सोचते नहीं चाहिए मुझे, ये तो एक बाधा है केवल भक्ति में, तो इसलिए भगवान उनको नहीं दिए। लेकिन अभी भगवान सोचने लगे कि देखिए यह जो सुदामा जो है कितना कष्ट करके, हालांकि उनके घर में कुछ भी नहीं था, इतना कष्ट करके मेरे लिए पोहा लाया है, मैं क्या दे सकता हूं इसके बदले में, ऐसे भगवान सोचने लगे। तो भगवान सोच रहे थे कि मेरे लिए तो वास्तव में इस उपहार के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसे भगवान सोच रहे थे, मेरे पास कुछ भी नहीं है इसके बदले में देने के लिए। ठीक है, फिर भी कम से कम इंद्र जी ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य देता हूं, कम से कम उतना तो देता हूं। तो इसलिए भगवान सोचते हैं कि जितना ऐश्वर्य इंद्र के पास नहीं है उतना ऐश्वर्य मैं सुदामा को देता हूं। एक्चुअली वो भी बहुत कम है इनके लिए, जो भक्ति के साथ, जो प्रेम के साथ, जो उपहार लाया है उन्होंने, उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन कम से कम इतना देता हूं, जो ऐश्वर्य इंद्रदेव के पास नहीं है उतना ऐश्वर्य देता हूं, लेकिन वो भी कम है, क्या करे, लेकिन कम से कम उतना देता हूं। यह सोचकर भगवान ने एक मुट्ठी लेकर खाया, और जब भगवान दूसरा मुट्ठी लेकर खाने ही वाले थे तो रुक्मिणी जी ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि देखिए एक मुट्ठी खाने से जो लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी का पूरा पूरा धन इनको मिलने वाला है, अगर दूसरा मुट्ठी आप खाओगे तो मुझे उनका दासी बनना पड़ेगा। इसलिए बस ऑफकोर्स रुक्मिणी जी और एक चीज भी सोच रहे थे कि ये जो पुराना पोहा जो है बहुत कड़क है, और इसलिए मेरे स्वामी के जो कोमल पेट है उसे झकम होगा, दर्द होगा, तो इसलिए नहीं खाना चाहिए, और ये भी और एक सोच थी। तो इस तरह भगवान सोच रहे थे, और सुदामा ने तो कुछ नहीं मांगा। भगवान के पास जाने के बाद भी कुछ नहीं मांगा उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे, क्या जानते थे, कि सही धन क्या है। इस भौतिक दुनिया का जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी धन है, वो तो क्षणभंगुर है, कभी होता है कभी नहीं होता है, उससे कभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होने वाला है। इस भौतिक धन को पाकर कौन सा व्यक्ति है जो संतुष्ट हुआ है? तो भौतिक धन को पाकर कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। तो सुदामा सोच रहे थे कि मेरे पास तो सबसे बड़ा धन है, वह है भगवान, उस धन को मैंने प्राप्त कर लिया, और किसी भी प्रकार का धन की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए सुदामा ने कुछ नहीं मांगा और वापस घर लौट रहे थे, और सोच रहे थे कि देखिए मैं तो कितना दरिद्र आदमी हूं, भगवान जो श्रीपति है, जो लक्ष्मी जी का पति है, ऐसा भगवान ने मुझे आलिंगन किया। उसी को सोचकर सुदामा सोच रहे थे मैं कितना भाग्यशाली, कितना भाग्यशाली, वही सोच रहे थे। उनके मन में यह विचार भी नहीं आया कि मैंने कुछ, मेरे लिए कुछ मांगा नहीं, वो विचार भी नहीं था। और फिर जब वापस आगे घर पे तो पूरा ऐश्वर्यवान महल था। हाँ, उन महलों का विवरण है भागवतम में, सब सोना चांदी और हीरे मोती, इंद्रदेव से भी ज्यादा ऐश्वर्य। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुदामा ब्राह्मण ने सोचा बस अभी इंद्र तृप्ति करना है। उस अवस्था में भी, उस परिस्थिति में भी सुदामा ब्राह्मण केवल अपना जो समय है भगवान की भक्ति करने में अपना पूरा समय बिता है, केवल भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हुए। वह मुख्य पॉइंट क्या है, इतना सब ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी सुदामा कैसे रहे, वह दरिद्र ही रहे। तो क्या सुदामा दरिद्र थे? तो पहले भी दरिद्र नहीं थे और इतना धन मिलने के बाद भी दरिद्र नहीं थे। क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि सच्चा धन क्या है। और इस दुनिया में हम देखते हैं कि कोई लोग होते जिनके पास बहुत ऐश्वर्य है लेकिन वास्तविकता में वो दरिद्र हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं है जो दरिद्र है वो भी दरिद्र है। तो एक तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि वास्तविकता में इस भौतिक दुनिया में सब लोग दरिद्र हैं, सब लोग भूखे हैं। जिनके पास बहुत धन है वो भी दरिद्र हैं और जिनके पास धन नहीं है वो भी दरिद्र हैं। क्योंकि सही दरिद्रता क्या है? सही दरिद्रता का मतलब यह है जिनके पास भगवान नहीं है वह असलियत में दरिद्र हैं। तो इसलिए हमने देखा है कि कुछ लोगों के पहले नारद मुनि कहते हैं कि जो दरिद्रता है यह परम अंजन है। लेकिन परम अंजन कब होता है? जब उस दवाई का, जब वो दवाई काम करता है तभी वो सही अंजन है। तो जब दरिद्र का, जब व्यक्ति दरिद्र होता है और असलियत में उनका जो मिथ्या अंग चूर चूर हो जाता है और वो फिर वो भगवान का भक्ति करने लगता है, फिर वह सही अंजन है। लेकिन केवल दरिद्रता जो है वह अंजन नहीं है। जब उस दरिद्रता से एक व्यक्ति भगवान का भक्ति करने लगता है, और इस प्रसंग में हम देखते हैं कि नलकुवेर और मणिग्रीव को अंततः क्या प्राप्त हुआ? भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। इसलिए वो परम अंजन है। तो इसलिए केवल दरिद्रता जो है वह एक अंजन नहीं है, या केवल दरिद्रता जो है यहां पर बताया जा रहा है कि उसके वजह से केवल क्या होता है, अच्छे गुणों का नाश होता है। क्योंकि जब व्यक्ति बहुत गरीब होता है और हमेशा अपने पालन पोषण के बारे में सोचता है, पालन पोषण के लिए झगड़ता है, पालन पोषण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, तो सब अच्छे गुण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति समझता है सही धन क्या है, वही जो सुदामा ब्राह्मण जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन बन जाते हैं, श्रीधर कोलावेचे, और उस लीला में भी हम देखते हैं बहुत ही गरीब थे श्रीधर गोलावेचर, इतने गरीब थे कि उनके जो कपड़े थे सब फटे हुए थे, और जब कुछ फटता था तो श्रीधर उसको गांठ मारता था। और निमाय पंडित जब आकर उनसे वाद विवाद करते थे तो निमाय पंडित कहते थे, भगवान ने क्या दिया आपको, देखो आपके कपड़े, कपड़े से भी ज्यादा घाट है, और घर में क्या है, घर में केवल लोहा का एक लोटा है जो ऐसा लोटा है जो चोर भी नहीं चोरी करेगा। तो निमाय पंडित, क्या दिया भगवान ने आपको, देखो जो शिवजी के पूजक है कितने अमीर है। तो ऐसा निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु श्रीधर कोलावेचर से वाद विवाद करते थे। तो लेकिन श्रीधर बिल्कुल संतुष्ट थे, जितना भी थोड़ा सा धन कमाते थे उसमें आधा प्रतिशत वो गंगा की उपासना के लिए उपयोग करते थे। और महाप्रभु कहते थे, क्या कैसा आदमी है, इतना थोड़ा कमा रहे हो उसमें आधा आधा आप गंगा की उपासना के लिए उपयोग कर रहे हो। और गंगा की उपासना क्यों करना चाहिए, गंगा तो मेरे चरणों से आता है। तो श्रीधर कहते थे, अरे क्या बोला जाता है, जब लड़का बड़ा होता है बुद्धि बढ़ता है, आपका तो बुद्धि बढ़ी ना रहा। लेकिन कोलावेचर श्रीधर संतुष्ट थे उस जीवन में, दिन रात हरिनाम लेते थे। तो महाप्रकाश लीला में जब चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों से कहते, जाओ श्रीधर को लाओ, बाकी भक्त कन कहते, श्रीधर कौन है, श्रीधर पता भी नहीं था किसी को श्रीधर कौन है। तो महाप्रभु कहते हैं, जाओ जहां पर जो जो से हरिनाम सुनाई दे रहा है वहां पर आपको श्रीधर प्राप्त होगा। तो भक्तगण जाते हैं, ढूंढ कर लाते हैं, और जब श्रीधर सुनता है कि महाप्रभु बुला रहे हैं, वो सुनकर ही बेहोश पड़, तो जबरदस्ती उनको लाते हैं महाप्रभु के पास। भगवान उनसे कहते हैं, मैं आपसे इतना प्रसन्न हूं, मांगो जो चाहे मांगो, मैं अष्ट सिद्धि देने के लिए तैयार हूं, मैं तो आपको इंद्रदेव बनाने के लिए तैयार हूं, जो चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं, जो चार प्रकार का जो मुक्ति है मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन श्रीधर कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यही चाहता हूं कि हर एक जीवन में आप इसी रूप में आकर मेरे साथ इस केले के पत्तों के लिए वाद विवाद करो, यही मैं चाहता हूं। तो महाप्रभु उनसे कहते थे कि देखो, उनसे कहते थे कि देखो, आप हालांकि गरीब लगते हो, आपके पास सबसे बड़ा धन है। और श्रीधर कहते थे, मेरे पास क्या धन है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन इस महाप्रकाश लीला में भगवान सबको दिखाते हैं कि किस प्रकार का धन श्रीधर के पास है। पूरे दुनिया को भगवान दिखाते हैं कि सही धन क्या है जो श्रीधर के पास है, वह है भगवान की भक्ति। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्याम सुंदर रूप दिखाते हैं उनको, राधा कृष्ण दिखाते हैं। तो यह है सही धन, भगवान का जो भक्ति है यही सही धन है। और वह भक्ति न होना वह सही दरिद्रता है। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पर टीका करते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति दरिद्र होता है तो स्वाभाविकता से वो विरक्त होता है इस भौतिक दुनिया से, और विरक्त होकर वो मुक्ति की ओर अग्रसर होता है, मुक्ति के लिए उनका जीवन अनुकूल हो जाता है। तो इसलिए जो दरिद्रता है वह सही अंजन तब है जब एक व्यक्ति को भगवान की ओर लेकर जाता है। नहीं तो हम देखते हैं आसपास में कितने सारे गरीब लोग हैं, लेकिन हर एक झोपड़पट्टी के ऊपर भी एक डिश एंटीना है। तो दरिद्र होने पर भी वो केवल इंद्र तृप्ति के बारे में सोच रहे, ऐसे दरिद्रता का क्या उपयोग है। लेकिन अगर उस दरिद्र अवस्था में अगर एक व्यक्ति इस मनुष्य जीवन का जो सही लक्ष्य जो है, इस लक्ष्य को जानता है, इस भौतिक दुनिया से विरक्त होता है और भगवान के भक्ति को पाता है, फिर वो दरिद्रता का उपयोग है। तो इसलिए सही दरिद्रता क्या है, भगवान की भक्ति न होना। और अगर एक व्यक्ति के पास बहुत ऐश्वर्य है लेकिन भगवान का भक्ति भी है, तो ऐसे ऐश्वर्यवान व्यक्ति क्या सोचता है, वो सोचता है कि जितना भी ऐश्वर्य है वो सब भगवान का है। तो उस चेतना में रहकर वो वास्तव में दरिद्रता में ही रह रहा है, क्योंकि वो सोचता है मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि असलित में दरिद्रता क्या है और ऐश्वर्य क्या है। भगवान की भक्ति जो है वो सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, और वो भक्ति न होना वह सही दरिद्रता है। इसलिए अगर किसी के पास धन हो या न हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति है तो वह सही में ऐश्वर्यवान है, और वह सही में स्वयं के लिए दरिद्र अवस्था में रहता है। जैसे कि गोस्वामियों ने स्वयं तो पेड़ के नीचे रहते थे, लेकिन भगवान के लिए कितने ऐश्वर्यशाली मंदिर बनाए उन्होंने, स्वयं पेड़ के नीचे। वह सही दरिद्रता है। और इस चेतना में जब हम रहते हैं कि सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए यूज करना चाहिए, जब हम इस चेतना में रहते हैं तभी असलियत में एक व्यक्ति धनी होता है, वो है भक्ति का धन। तो इस तरह यह इस सिद्धांत को समझना अत्यंत आवश्यक है कि सही धन क्या है और सही दरिद्रता क्या है। हरे कृष्ण। ठीक है, किसका एक प्रश्न है तो मैंने सकता सुदामा ने, सुदामा के लिए भगवान ने धन इसलिए दिया, एक चीज मैंने ऑलरेडी बताया कि भगवान सोच रहे थे कि मैं क्या दूं, जो उन्होंने जो प्रेम से वो जो उपहार लाया है मेरे लिए उसके बदले में क्या दूं। उस प्रेम से आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने उनको वो ऐश्वर्य प्रदान किया, और उस ऐश्वर्य से भगवान जानते थे कि सुदामा ब्राह्मण वह कम से कम अपना जो जीवन है जो बेसिक चीज है खाने के लिए, पहनने के लिए, जो भी बेसिक चीज है उनको अच्छी तरह से प्राप्त हो, और इस तरह वो अच्छी तरह से भगवान की भक्ति कर सके। तो इसलिए भगवान ने उनको दे दिया। लेकिन उस अवस्था में भी उस सुदामा का चेतना वही था कि सब कुछ भगवान का है, मैं तो केवल दरिद्र ब्राह्मण हूं। उनका चेतना जो था वही था। तो इसलिए जो दरिद्रता है जो है अगर, तो इसलिए एक भक्त को केवल जितना चाहिए अपने जीवन का निर्वाहन के लिए जितना चाहिए उतना वो लेता है, और बाकी सब भगवान की सेवा के लिए। तो इस तरह ये जो दोनों जो शास्त्र का मत जो है, एक तरह दरिद्रता जो है वो भक्ति के लिए अनुकूल है, और दूसरी तरफ दरिद्रता जो है वह उससे अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं, और यह दोनों को समझने के लिए आचार्यगण समझाते हैं कि एक भक्त जो है उनका चेतना क्या होता है कि मेरे जीवन के लिए जो भी बेसिक चीज़ चाहिए और उसे मैं संतुष्ट रहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संतुष्ट रहना। जो भी थोड़ा कुछ जो है हमारे निर्वाह के लिए, शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए जो भी थोड़ा कुछ चाहिए उसे प्राप्त करके संतुष्ट रहना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। और जितना भी ऐश्वर्य, अगर भगवान ऐश्वर्य देते हैं लेकिन भक्त सोचता है कि यह सब कुछ ऐश्वर्य जो है वो केवल भगवान के लिए, मेरे इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, यह भक्त का चेतना। तो यह चेतना में अगर कोई व्यक्ति हो तो भगवान देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं कि भक्त जो है उसका दुरुपयोग कभी नहीं करेगा। तो इसी प्रकार भगवान ने बलि महाराज को दिया, हालांकि उन्होंने सब कुछ छीन लिया पहले, तो फिर बाद में उनको जो सुतल ग्रह है वो प्रदान किया, तो उसका भी वर्णन आता है भागवतम में। वो भी, वो सुतल ग्रह जो है वह भी इंद्रदेव का जो स्वर्ग जो है उससे भी ज्यादा ऐश्वर्य था। उतना ही नहीं, भगवान स्वयं वहां थे। तो देखिए कितना ऐश्वर्य प्रदान किया प्रभुपाद जी से भगवान ने, छीन लिया लेकिन बाद में कितना ऐश्वर्य दे दिया। तो जो बिजनेस वाला है वो भी सोचता है अरे कितना अच्छा बिजनेसमैन है ये, लेकिन हालांकि इतना दिया प्रभुपाद जी का चेतना क्या। प्रभुपाद जी ने तो हर एक पैसा जो है केवल भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल, तो इसलिए भगवान ने सब कुछ दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथना, श्रीमद भागवतम की समवेद गौर भक्त वृंद की नदाय गौर प्रेमानंद।